अध्याय दो का पहला श्लोक। संजय उवाच। संजय ने कहा, मधुसूदन तथा कृपया आविष्टम, मधु जैसे मीठे काम के हंता ने इस प्रकार करुणा से भरे, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम, अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों से विषादयुक्त हुए, तम इदम वाक्यम उवाच। उस अर्जुन को यह वचन बोले, मधुसूदन तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम तम इदम वाक्यम उवाच। भावात, मधु जैसे मीठे काम के हंता शिव बाबा ने इस प्रकार संबंधियों के मोह में करुणा से भरे, अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों से विषादयुक्त हुए, उस अर्जुन को यह वचन बोले। अध्याय दो का दूसरा श्लोक। भगवान उवाच। भगवान ने कहा, अर्जुन विष में अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम। हे अर्जुन, असमय में अनार्य सेवित स्वर्ग में ना ले जाने वाली, इदम अकीर्ति करम कश्मलम, यह अपकीर्तिकारक मलिनता, त्वा कुतः समुपस्थितम, तुझे कहाँ से आ गई। अर्जुन विष में अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम, इदम अकीर्ति करम कश्मलम, त्वा कुतः समुपस्थितम। भावात, हे अर्जुन, असमय में अनार्य सेवित स्वर्ग में ना ले जाने वाली यह सामाजिक अपकीर्तिकारक मलिनता क्षत्रिय होते हुए भी तुझे कहाँ से आ गई। अध्याय दो का तीसरा श्लोक। पार्थ क्लैबम मास्म गमा, हे पृथ्वीराज, नपुंसक मत बनो, एतत् त्वयि उपपद्यते ना, ये तुम्हारे योग्य नहीं, परंतप क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। हे शत्रुतापी, क्षुद्र हृदय की दुर्बलता छोड़कर उठो। पार्थ क्लैबम मास्म गमा, एतत् त्वयि उपपद्यते ना, परंतप क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। भावात, हे पृथ्वीराज, नपुंसक मत बनो, ये तुम्हारे कुल में प्रशंसा के योग्य नहीं। हे शत्रुतापी, क्षुद्र हृदय की आकस्मिक दुर्बलता छोड़कर उठो। अध्याय दो का चौथा श्लोक। अर्जुन उवाच। कथम भीष्म अर्जुन ने कहा, मधुसूदन भीष्मम च द्रोणम प्रति, हे काम के हंता, भीष्म और द्रोण के प्रति, संखे अहम इशुभे कथम योत्स्यामी, युद्ध में मैं बाणों से कैसे युद्ध करूंगा। अरि सूदन पूजार हो, हे कामारी मर्दन, पूजनीय है मधुसूदन भीष्मम च द्रोणम प्रति, संखे अहम इशुभे कथम योत्स्यामी, अरि सूदन पूजार हो। भावात, हे मधु जैसे मिठास भरे काम के हंता, भीष्म जैसे बाबाओं और महान प्राचार्य द्रोण के प्रति, धर्म युद्ध में मैं ज्ञान बाणों से कटाक्ष पूर्वक अपमान से कैसे युद्ध करूंगा। हे कामारी मर्दन, वे मुझे बचपन से ही बहुत प्यार देते आ रहे हैं, सम्माननीय और पूजनीय हैं। अध्याय दो का पांचवां श्लोक।
गुरु नहत्वाहि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष मपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुञ्जी। भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्।
महानुभावान् गुरुन् आहत्वा हि, महानुभाव गुरुओं को मानने की अपेक्षा। इह लोके भैक्षम भोक्तुम अपि श्रेयो, इस लोक में भीख मांगकर खाना भी अच्छा है। अर्थ कामान गुरुन हत्वा तु, धने छुप गुरुओं को मार कर तो। इह रुधिर प्रदिग्धान भोगान एव भुंजिए, यहाँ खून से सने भोगों को ही भोगूंगा। महानुभावान गुरुन आहत्वा हि इह लोके भैक्ष्यम भोक्तुम अपि श्रेयो, अर्थ कामान गुरुन हत्वा तु इह रुधिर प्रदिग्धान भोगान एव भुंजिए। भावात महानुभाव गुरुओं को उनके धर्म में अनिश्चय की मौत मारने की अपेक्षा इस लोक में भीख मांगकर खाना भी अच्छा है, क्योंकि मान मर्तबा के लोलुप और धनेच्छुक गुरुओं को स्वधारणायुक्त जीवन शैली से मार कर तो यहाँ विकल्पों के खून से सने आत्मग्लानी से भरे हुए इन भोगों को ही भोगूंगा। अध्याय दो का छठवां श्लोक। चानो कतरत करिया, और हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, वा यत जयम वा यदि नो जयू, अथवा कि हम जीतेंगे अथवा यदि हमें जीतेंगे। एतत ना विद्महा, यह नहीं जानते। यान हत्वा ना जिजी विषामह एव, जिन्हें मारकर जीना ही नहीं चाहते। ते धार्तराष्ट्रा प्रमुखे एव अवस्थिता, वे धृतराष्ट्र के पुत्र सामने ही खड़े हैं। चानो कतरत करिया वा यत जयेम वा यदि नो जयेम, एतत ना विद्मा यान हत्वा ना जिजी विषामा एव ते धार्तराष्ट्रा प्रमुखे एव अवस्थिता। भावात और हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, अथवा कि हम धर्म युद्ध में निश्चित रूप से जीतेंगे अथवा यदि वे हमें जीतेंगे। यह भविष्यफल ठीक ठीक हम नहीं जानते। जिन्हें मारकर हम जीना ही नहीं चाहते, संकल्पों के खराब खून वाले, वे राष्ट्र की पूंजी स्वार्थ में धरे बैठे धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव सामने ही खड़े हैं। अध्याय दो का सातवां श्लोक।
कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव, पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ चेता, यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हं शाति मां त्वां प्रपन्नम्।
कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा, दीनता के दोष से विकृत स्वभाव वाला, धर्म सम्मूर्चेता त्वां पृच्छामि, सद्धर्म की बातों में महामूर्ख आपसे पूछता हूँ। यत श्रेय निश्चितम स्यात् तत् मे ब्रूहि, जो भलाई की निश्चित बात हो वह मुझे बताइए। अहम ते शिष्यः, मैं आपका शिष्य हूँ। त्वाम प्रपन्नम माम शाधि, आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा, धर्म सम्मूर्चेता त्वाम पृच्छामि, यत श्रेय निश्चितम स्यात् तत् मे ब्रूहि, अहम ते शिष्यः त्वाम प्रपन्नम माम शाधि। भावात नीचे गिरी हुई पापपूर्ण कलियुगी मनबुद्धि की दीनता के दोष से विकृत स्वभाव वाला, सद्धर्म कर्म की बातों में महामूर्ख में आप त्रिकालदर्शी भगवान से पूछता हूँ। मेरे लिए जो भलाई की सद्धर्मानुकूल ऐसी निश्चित बात हो वह मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, हर प्रकार से आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। अध्याय दो का आठवां श्लोक।
नहीं प्रपश्यामि ममापनुत्या, यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम्, अवाप्य भूमावसपत्नमृत्थम्, राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्।
हि भूमो अवापे अस्पत्न ऋद्धम राज्यम्, क्योंकि पृथ्वी पर शत्रुविहीन ऐश्वर्यवान राज्य, च सुराणाम आधिपत्यम अवाप्य अपि, और देवों का स्वामित्व पाकर के भी। यत इंद्रियाणाम उच्छोषणम मम शोकम, जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को अपनुद्यात न प्रपश्यामि, दूर करे वैसा नहीं देखता। कि भूमो अवापे अस्पत्न रिद्धम राज्यम च सुराणाम आधिपत्यम अवापे अपि यत इंद्रियाणाम उच्छोषणम मम शोकम अपनुद्यात न प्रपश्यामि भावात्, क्योंकि पृथ्वी पर शत्रुविहीन ऐश्वर्यवान सारे विश्व का राज्य और देवों का स्वामित्व पा करके भी आप सर्वशक्तिवान के सिवा, जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर करे वैसा कल्याण मैं नहीं देखता। अध्याय 2 का 9वां श्लोक। संजय उवाच। संजय ने कहा, परंतप गुड़ाकेश ऋषिकेशम गोविंदम एवं उक्त्वा, शत्रुतापक निद्राजीत अर्जुन जितेंद्रिय गोविंद से ऐसा कहकर, न युद्ध से इति ह उक्त्वा तूष्णीम बभूव, युद्ध नहीं करूंगा, इतना सीधा कहकर चुप हो गया। परंतप गुड़ाकेश ऋषिकेशम गोविंदम एवं उक्त्वा, न युद्ध से इति ह उक्त्वा तूष्णीम बभूव, भावात् शत्रुतापक निद्राजीत अर्जुन ह्यूमन बच्चियों के प्रकृतिवेत्ता जितेंद्रिय गोविंद से ऐसा स्पष्ट कहकर कि मैं सम्माननीय गुरुजनों से धर्म निर्णायक युद्ध नहीं करूंगा, इतना सीधा कहकर अभी अभी दुख और संशयहर्ता की सीख को मान के भी ना करके चुप हो गया। अध्याय 2 का 10वां श्लोक। भारत उभयोः सेन्योः मध्ये, हे भरतवंशी राजा, दोनों सेनाओं के बीच में विषीदन्तं तं ऋषिकेशं शोकाकुल उस अर्जुन से इंद्रियजीत शिव बाबा प्रहसन इव इदम वचः उवाच, प्रसन्न हुए के समान यह वचन कहने लगे। भारत उभयोः सेन्योः मध्ये विषीदन्तं तं ऋषिकेशं प्रहसन इव इदम वचः उवाच, भावात् हे भरतवंशी राजा, यादव सेना सहित कौरवों और पांडवों दोनों सेनाओं के बीच में शोकाकुल उस भीड़ भरे माहौल में मायूस हुए अर्जुन से इंद्रियजीत अर्थात जगतजीत शिव बाबा प्रसन्न हुए के समान उसका उमंगोत्साह बढ़ाने लिए यह वचन कहने लगे। अध्याय 2 का 11वां श्लोक। भगवान उवाच। भगवान ने कहा, त्वम अशोचान अन्वशोचः, तू अशोचनीय शोक कर रहा है, च प्रज्ञावादान भाष से, तथा ज्ञानियों जैसे वचन बोलता है, पंडिता गतासून चा अगतासून न अनुशोचंती, विद्वान लोग मरने और जीने वालों का शोक नहीं करते। त्वम अशोचान अन्वशोचः च प्रज्ञावादान भाष से, पंडिता गतासून चा अगतासून न अनुशोचंती, भावात् तू अशोचनीय सन्नद्ध विनाशी दैहिक संबंधों का शोक कर रहा है, तथा दुखी होते होते भी आत्मज्ञानियों जैसे वचन बोलता है, विद्वान लोग सद्धर्म के प्रति अनिश्चय से मरने और विधर्मियों ऊपर निश्चय में जीने वालों का शोक कभी नहीं करते। अध्याय 2 का 12वां श्लोक। अहम जातु नासम ना एव, मैं कोई समय ना था, ऐसा नहीं है। त्वम न इमे जनाधिपाह एव न, तू नहीं, ये नेतागण ही नहीं। च अतः परम वयम सर्वे न भविष्यामः न, और अब बाद में हम सब नहीं होंगे, नहीं है। अहम जातु नासम न एव, त्वम न इमे जनाधिपाह एव न, च अतः परम वयम सर्वे न भविष्यामः न। भावात् मैं अक्षयात्म ज्योतिरूप शिव, कोई समय ना था, ऐसा नहीं है, ऐसे ही तू नहीं था, अथवा ये नेतागण ही नहीं थे, और अब बाद में बेहद ड्रामा के आत्म स्टार रूप हम सब नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। हम आत्माएं अविनाशी हैं, देह विनाशी है। अध्याय 2 का 13वां श्लोक। यथा देहिनः अस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जरा, जैसे आत्मा की इस देह में कुमार युवावस्था बुढ़ापा है, तथा देहांतर प्राप्ति है, वैसे ही दूसरे दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। धीरः तत्र न मुह्यति, धैर्यवान उस विषय में मोह नहीं करते। यथा देहिनः अस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। भावात् जैसे आत्मा की इस देह में उत्तरोत्तर सत रजतम वाली कुमार युवावस्था और बुढ़ापा है, वैसे ही चतुर्युगी में क्षीण बलवीरे के दूसरे दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। सच्ची गीता ज्ञान से आत्मस्थ धैर्यवान ब्रह्मावत्स कभी भी उस विषय में मोह नहीं करते। अध्याय 2 का 14वां श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगमापायिनो नित्या तांस्थिति शस्व भारत। कौन्ते मात्रा स्पर्शास्तु शीतोष्ण सुख दुःखदा, हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के विषय तो सर्दी गर्मी सुख दुख दाता है, आगमा पाइनः अनित्याः आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं। भारत तान तितिक्षस्व, हे भरतवंशी, उनको सहन कर। कौन्ते मात्रा स्पर्शाः तु शीतोष्ण सुख दुखताः, आगमा पाइनः अनित्या भारत तान तितिक्षस्व। भावात् हे कुंती पुत्र, कर्म इंद्रियों के विषय तो घड़ी घड़ी परिवर्तनशील, सर्दी गर्मी सुख दुख दाता है, आने जाने वाले हैं, अधोगामी स्वर्गीय सुखों की भेंट में भी अनित्य हैं। हे भरतवंशी, उनको तू अपनी किसी भी तिकड़म बिना सहन कर। अध्याय 2 का 15वां श्लोक। पुरुषर्षभ समदुख सुखम यम धीरम पुरुषम, हे आत्मारूप पाठधारियों में सर्वश्रेष्ठ, दुख सुख में समान जिस धैर्यवान पुरुष को। एते न व्यथयन्ति, ये व्यथित नहीं करते। सह ही अमृतत्वाय कल्पते, वह अवश्य ही अमरत्व के लिए योग्य बनता है। पुरुषर्षभ समदुख सुखम यम धीरम पुरुषम, एते न व्यथयन्ति सह ही अमृतत्वाय कल्पते। भावात् हे भोगी आत्मारूप पाठधारियों में सर्वश्रेष्ठ, दुख सुख में समान रहने वाले जिस धैर्यवान पुरुष को ये कोई भी विषय भोग कर्म करते भी व्यथित नहीं करते, वह आत्म ज्योति में एकाग्र व्यक्ति अवश्य ही अमृतत्व के लिए योग्य बनता है। अध्याय 2 का 16वां श्लोक। असतः भावः न विद्यते, असत का अस्तित्व नहीं होता, तो सतः अभावः न विद्यते एवं सत्य का अभाव नहीं होता। अन्योः उभयोः अपि अन्तः तत्वदर्शिभिः दृष्टः, इन दोनों का भी निर्णय तत्वज्ञानियों द्वारा देखा गया है। असतः भावः न विद्यते तु सतः अभावः न विद्यते अन्योः उभयोः अपि अन्तः तत्वदर्शिभिः दृष्टः, भावात् असत का अस्तित्व नहीं होता एवं कोई भी सत्य का कल्पांतकारी महाविनाश में या किसी भी चतुर्युगी में अभाव नहीं होता। जैसे सृष्टि बीज अर्थात महादेव अर्थात आदम देह से भी सदाकाल है और रहेगा, इन सत-सत दोनों का भी निर्णय कपिल जैसे तत्वज्ञानियों द्वारा देखा गया है। अध्याय 2 का 17वां श्लोक। येन इदं सर्वं ततम, जिस द्वारा यह सारा फैला है, तत्तु अविनाशी विद्धि, उसको तो अविनाशी जान, अस्य अव्ययस्य विनाशं कर्तुम, इस अविनाशी का विनाश करने में कश्चित् न अर्हति, कोई भी समर्थ नहीं है। येन इदं सर्वं ततम, तत्तु अविनाशी विद्धि, अस्य अव्ययस्य विनाशं कर्तुम कश्चित् न अर्हति, भावात् जिस मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीज महादेव द्वारा यह सारा अश्वत्थ नामक सृष्टि वृक्ष फैला है, उसको तो अविनाशी जान, इस अविनाशी जगतपिता स्वरूप साकार बीज का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, कल्पांत में भी वह अकाल मूर्त है। अध्याय 2 का 18वां श्लोक।
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरेण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्ध्यस्वभारत।
नित्यस्य अनाशिनः अप्रमेयस्य, नित्य अविनाशी माप न करने योग्य शरीरिणः इमे देहा, देहधारी आत्माओं की ये शरीर अंतवंतः उक्ताः नाशवान कहे हैं, तस्मात् भारत युद्धस्व, अतः हे भरतवंशी युद्ध कर, नित्यस्य अनाशिनः अप्रमेयस्य शरीरिणः इमे देहा, अंतवंतः उक्ताः तस्मात् भारत युद्धस्व, भावात् ऐसे तो नित्य अविनाशी माप न करने योग्य अन्य सभी अनुरूप अर्थात अति सूक्ष्म देहधारी आत्माओं के ये शरीर चतुर्युगी के जन्म जन्मांतरों में भी नाशवान कहे हैं, अतः हे भरतवंशी धर्म युद्ध कर, क्योंकि आत्मधर्म ही अविनाशी है। अध्याय 2 का 19वां श्लोक। या एनम हंतारम वेत्ति, जो इसको मारने वाला समझता है, च यह एनम हतम मन्यते, और जो इसे मरा हुआ मानता है, तो उभो न विजानीतः, वे दोनों नहीं जानते, अयम न हन्ति न हन्यते, यह न मारता है न मारा जाता है, या एनम हंतारम वेत्ति, च यह एनम हतम मन्यते, तो उभो न विजानीतः, अयम नाहन्ति नाहन्यते, भावात् जो इस देहधारी आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे कभी मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही ठीक नहीं जानते। वो देहरूप वृक्ष का बीज है, यह आत्मा कल्पांत के महाविनाश में भी ना किसी को मारता है और ना मारा जाता है। अध्याय 2 का 20वां श्लोक। अयम कदाचित् न जायते वाना म्रियते, यह कभी ना जन्मता है और ना मरता है। वा भूत्वा भूयः ना भविता, यह होकर फिर से नहीं होगा। अजह नित्यः शाश्वता पुराणोः अयम्, अजन्मा नित्य सनातन पुरातन यह। शरीरे हन्यमाने ना हन्यते, देह हनन होते नहीं मारा जाता। अयम् कदाचित् न जायते वा न म्रियते वा भूत्वा भूयः न भविता, अजः नित्यः शाश्वतः पुराणो अयम् शरीरे हन्यमाने न हन्यते। भावात् यह कभी न जन्मता है और न मरता है। हाँ, सहज सहज देह रूप वस्त्र उतारता भी है, यह होकर फिर से सृष्टि रंगमंच पर नहीं होगा, ऐसे भी नहीं है। अजन्मा नित्य सनातन कल्प कल्प की शांत स्वधर्म वाली पुरातन यह अविनाशी आत्मा देह हनन कराने की उपक्रम होते भी नहीं मारा जाता। अध्याय 2 का 21वां श्लोक। पार्थ या एनम नित्यम अजम अव्ययम अविनाशिनम वेद, हे पृथ्वीपति, जो इसको नित्य जन्म रहित अक्षय अविनाशी जानता है, सपुरुषा कम कथम घातेती कम हंती, वह आत्मा किसको कैसे मरवाता है किसको मारता है। पार्थ ये एनम नित्यम अजम अव्ययम अविनाशिनम वेद, सपुरुषा कम कथम घातेती कम हंती। भावात् हे पृथ्वीपति, जो इस ज्योतिर्मय अनुरूप आत्मा को नित्य जन्म रहित अक्षय व अविनाशी जानता है, वह अपने स्वभाव संस्कार की अविनाशी आत्मा होते भी किसको कैसे मरवाता है और यहाँ प्रकृति के अधीन भी किसको मारता है। अध्याय 2 का 22वां श्लोक।
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि।
यथा नरः जीर्णानि वासांसि विहाय, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर अपराणी नवानी गृहणाति दूसरे नए ग्रहण करता है, तथा जीर्णानी शरीरानी विहाय, उसी प्रकार पुराने शरीरों को छोड़कर देही अन्यानी नवानी संयाति आत्मा दूसरे नए को ग्रहण करती है। यथा नरः जीर्णानी वासांसि विहाय अपराणी नवानी गृहणाति, तथा जीर्णानी शरीरानी विहाय देही अन्यानी नवानी संयाति। भावात् जैसे स्वर्ग में आत्माभिमानी श्रेष्ठ मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए स्वेच्छा से ग्रहण करता है, उसी प्रकार नरनिर्मित नरक में देहभानी पुराने शरीरों को अपनी अनिच्छा से छोड़कर आत्मा दूसरे नए शरीरों को बरबस ग्रहण करती है। अध्याय 2 का 23वां श्लोक। एनम शस्त्राणि न छिन्दन्ति, इसको शस्त्र नहीं काटते। एनम पावकः न दहति, इसको अग्नि नहीं जलाती। एनम मारुतः न शोषयति, इसको हवा नहीं सुखाती। च आपः न क्लेदयन्ति, और जल नहीं भिगोता। एनम शस्त्राणि न छिन्दन्ति, एनम पावकः न दहति, एनम मारुतः न शोषयति, च आपः न क्लेदयन्ति। भावात् इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, इसको अन्य जड़त्वमय तत्वों जैसी अग्नि नहीं जलाती, इसको अदर्शनीय हवा नहीं सुखाती और ईश्वरीय ज्ञानजल की पवित्रता के सिवाय जल नहीं भिगोता। प्रत्येक चतुर्युगी पूर्व के महाविनाश में भी यही बात है। अध्याय 2 का 24वां श्लोक।
अच्छेद्योयमदायोऽयम् अक्लेद्योशोष एव च
अयम अच्छे देह, अयम अदाह्य अकले देह। यह अकाट्य है और ना ही जलता भीगता है। चैव अशोष्यः, और निस्संदेह सूखता नहीं। अयम नित्यः स्थाणुः, यह नित्य है, स्थितशील है। सर्वगतः सनातन अचलः, सर्वगामी है, सनातन अचल है। अयम अच्छे देह, अयम अदाह्य अकले देह, च एव अशोष्यः, अयम नित्यः स्थाणुः, सर्वगतः सनातन अचलः। भावात्, यह आत्म ज्योति बिंदु सदा अकाट्य है और अग्नि जल द्वारा कभी ना ही जलता भीगता है और निस्संदेह गर्म हवा से कभी सूखता नहीं। यह नित्य अविनाशी है, स्थितशील है। मन बुद्धि जैसी अदर्शनीय शक्ति होने से त्रिलोक में सर्वगामी है, सनातन और अचल है। अध्याय 2 का 25वां श्लोक। अयम अव्यक्तः, अयम अचिंत्यः, यह अव्यक्त है, यह अचिंत्य है। अयम अविकार्यः उच्यते, यह निर्विकारी बताई जाती है। तस्मात् एनम् एवं विदित्वा, इसलिए इसको ऐसा जानकर, अनुशोचितुम् न अर्हसि, शोक करने के योग्य नहीं है। अयम अव्यक्तः, अयम अचिंत्यः, अयम अविकार्यः उच्यते, तस्मात् एनम् एवं विदित्वा, अनुशोचितुम् न अर्हसि। भावात्, यह अव्यक्त है, यह अचिंत्य है, यह विनाशी पंचभूतों का संग न रहने पर सदा निर्विकारी बताई जाती है। इसलिए इसको ऐसा पृथ्वी जलादि पंचभूतों से पृथक जानकर शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मा सुख शांति रूप है। अध्याय 2 का 26वां श्लोक।
अथ चैनं नित्य जातं नित्यं मामन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि।
चात एनं नित्य जातं वा नित्यं मृतं मन्यसे, और यदि इसे सदा जन्मने वाला अथवा नित्य मरने वाला मानता है, तथापि महाबाहो त्वम एवं शोचितुम न अर्हसि, तो भी हे दीर्घ बाहु, तू इस तरह शोक करने योग्य नहीं है। चात एनम नित्य जातम वा नित्यम मृतम मन्ने से, तथापि महाबाहु त्वम एवं शोचितुम न अर्हसि। भावात, और यदि इसे सदा जन्मने वाला अथवा नित्य मरने वाला मानता है, तो भी हे अष्टमूर्तियों वाला दीर्घ बाहु, तू इस तरह शोक करने योग्य नहीं है। अध्याय 2 का 27वां श्लोक।
जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारेति न त्वं शोचितुमर्हसि।
हि जातस्य मृत्युः ध्रुवः, क्योंकि जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है। च मृतस्य जन्म ध्रुवम्, और मरने वाले का जन्म निश्चित है। तस्मात् परिहारे अर्थे, अतः ना टलने योग्य बात में त्वम शोचितुम अर्हसि, ना तू शोक करने योग्य नहीं है। कि जातस्य मृत्युः ध्रुवा च मृतस्य जन्म ध्रुवम्, तस्मात् परिहारे अर्थे त्वम शोचितुम अर्हसि ना। भावात्, क्योंकि जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और उसी तरह देह द्वारा मरने वाले का जन्म निश्चित है। देह भान है तो जन्म मृत्यु भी रहेगी, अतः ना टलने योग्य बात में अविनाशी ड्रामा समझ तू शोक करने योग्य नहीं है। कल्प कल्प जन्म मृत्यु का दुख नरक में होता ही है। अध्याय 2 का 28वां श्लोक। भारत, भूतानी आदिनी अव्यक्त है, हे भरतवंशी, प्राणियों का आदि अदृश्य है, व्यक्त मध्यानी, मध्य व्यक्त है, अव्यक्त निधनानी एव, मृत्यु बाद में भी अव्यक्त है। तत्र का परिदेवना, उसमें क्या शोक करना। भारत भूतानी आदिनी अव्यक्त व्यक्त मध्यानी अव्यक्त निधनानी एव, तत्र का परिदेवना। भावार्थ, हे भरतवंशी, सृष्टि आदिकाल में भी प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है, मृत्यु बाद या कल्पांत अर्थात महाविनाश में भी अव्यक्त है। उस हूबहू कल्प की आवृत्ति में क्या शोक करना। किंतु पुरुषोत्तम संगम में 100% आत्मस्थ बन जाने से। अध्याय 2 का 29वां श्लोक।
आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यम् आश्चर्यवच्चैन मन्य श्रुणोति श्रुत्वा केन वेद न चैव कश्चित्।
एनम कश्चित् आश्चर्यवत् वदति, इसको कोई आश्चर्य से बताता है। च अन्य तथा एव आश्चर्यवत् पश्यति, और दूसरा वैसे ही आश्चर्य से देखता है। च अन्य एनम आश्चर्यवत् एव श्रृणोति, और दूसरा इसको आश्चर्य से ही सुनता है। च कश्चित् श्रुत्वा अपि एनम न वेद, और कोई सुनकर भी इसे नहीं जान पाता। एनम कश्चित् आश्चर्यवत् वदति, च अन्यः तथा एव आश्चर्यवत् पश्यति, च अन्यः एनम आश्चर्यवत् एव श्रृणोति, च कश्चित् श्रुत्वा अपि एनम न वेद। भावार्थ, इस हीरो को कोई नंबर वार जानकार आश्चर्य से बताता है, और दूसरा वैसे ही आश्चर्य से देखता है, और दूसरा कोई कुछ जानते हुए भी इसको आश्चर्य से ही सुनता है, और कोई अनास्थावान नास्तिक पूरा अधूरा अनमने से सुनकर भी इसे नहीं जान पाता। इसीलिए संसार में नंबरवार सुखभोगी हैं। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। शंकर क्या करते हैं? उन हीरो का पाठ ऐसा वंडरफुल है जो तुम विश्वास कर ना सको। मुरली, तारीख 14 मई 1970, अध्याय 2 का 30वां श्लोक। भारत अयम देही सर्वस्य देहे नित्यम अवध्या। हे ज्ञान आभा में रत अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा अवध्य है। तस्मात् त्वम सर्वाणि भूतानि शोचितुम न अर्हसि, इसलिए तू सभी प्राणियों का शोक करने के लिए योग्य नहीं है। भारत अयम देही सर्वस्य देहे नित्यम अवध्या, तस्मात् त्वम सर्वाणि भूतानि शोचितुम न अर्हसि। भावार्थ, हे ज्ञान आभा में रत अर्जुन, यह सृष्टि बीज हीरो परम प्लस आत्मा सबके शरीरों में पुरुषोत्तम संगम के नंबरवार पुरुषार्थ से प्राप्त सहज राजयोग की ऊर्जा से सदा अवध्य है। इसलिए तू इस धर्म युद्ध में हाजिर सभी प्राणियों का भी इतना शोक करने के लिए योग्य नहीं है। अध्याय 2 का 31वां श्लोक।
स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पि तुमर्हसि, धर्म्याति युद्धा श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते।
च स्वधर्मम अपि अवेक्ष विकम्पितुम न अर्हसि, इसके अलावा अपनी आत्मा के धर्म को भी देखकर विचलित होने योग्य नहीं है। ही धर्म्यात युद्धात, क्योंकि धर्म युद्ध के सिवाय क्षत्रिय से अन्यत श्रेय न विद्यते, क्षत्रिय के लिए दूसरा कल्याण नहीं है। च स्वधर्मम अपि अवेक्ष विकम्पितुम न अर्हसि, ही धर्म्यात युद्धात क्षत्रिय से अन्यत श्रेय न विद्यते। भावार्थ, इसके अलावा अपनी आत्मा के क्षात्र धर्म को भी देखकर तू विचलित होने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्मयुद्ध के सिवाय चारों वर्णों में विशेष रूप से तेरे जैसे क्षत्रिय के लिए क्षात्र धर्म से मिले राज्य रक्षा सिवा कोई दूसरा कल्याण नहीं है। अध्याय 2 का 32वां श्लोक।
यत्रिच्छया चोपपन्नो स्वर्ग कारम पावृतम् सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्।
यत्रिच्छया उपपन्नम् च अपावृतम् स्वर्ग द्वारम्। अनायास प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार वाले ईदृशम युद्धम पार्थ सुखिना क्षत्रियाः लभन्ते। ऐसे युद्ध को हे पृथ्वीपति सुखी क्षत्रिय जन पाते हैं। यदृच्छया उपन्नम च अपावृतम स्वर्ग द्वारम् ईदृशम युद्धम पार्थ सुखिना क्षत्रियाः लभन्ते। भावात् सिविल वॉर द्वारा अनायास प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार वाले ऐसे महान धर्म युद्ध को हे पृथ्वीपति सुखी क्षत्रिय जन ही पाते हैं। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य, जो मायावी विकारों के युद्ध के मैदान में देह व देहभान को छोड़ेंगे वे स्वर्ग में आवेंगे। मुरली, तारीख 6 मई 1967, पृष्ठ 1 अंत। अध्याय 2 का 33वां श्लोक। अचेत्वम इमं धर्मेम संग्रामम न करिष्यसि, किंतु यदि तू यह धार्मिक युद्ध नहीं करेगा ततः स्वधर्मम च कीर्तिम हित्वा, तो स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके पापम अवाप्स्यसि पाप का भागी बनेगा। अचेत्वम इमं धर्मेम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम च कीर्तिम हित्वा पापम अवाप्स्यसि। भावात् किंतु यदि तू गेट वे टू हेवन वाला यह धार्मिक अहिंसक महाभारत युद्ध नहीं करेगा तो अल्लाह अव्वल दीन के सत्य सनातन स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके द्वैतवादी नारकीय दैत्यों के हिंसक धर्म वृद्धि के पाप का ही भागी बनेगा। अध्याय 2 का 34वां श्लोक। चा भूतानि अव्यामते अकीर्तिम कथिष्यन्ति, और लोग निरंतर तेरी अपकीर्ति करेंगे। चा संभावितस्य अकीर्ति मरणात् अपि अतिरिच्यते, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मौत से भी बढ़कर है। चा भूतानि अव्यामते अकीर्तिम कथिष्यन्ति, चा संभावितस्य अकीर्ति मरणात् अपि अतिरिच्यते। भावात् और संसार के दुखी अशांत लोग निरंतर तेरी अपकीर्ति करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए यहाँ अपकीर्ति मौत से भी बढ़कर है। अध्याय 2 का 35वां श्लोक। महारथा त्वाम भयात, महारथी तुझको भय से, रणात उपरतम मनस्यन्ते, युद्ध से विमुख हुआ मानेंगे। च येषां त्वं बहुमतः भूत्वा, और जिनके तेरा अधिक मान है, लाघवम यास्यसि तुच्छ समझेंगे। महारथा त्वाम भयात रणात उपरतम मनस्यन्ते, च येषां त्वं बहुमतः भूत्वा लाघवम यास्यसि। भावात् महारथी तुझको क्षत्रिय योद्धा होते हुए भी विरोधियों के भय से धर्म युद्ध से भयभीत व विमुख हुआ मानेंगे, और जिनके मन में तेरा महानतम धनुर्धर होने का इतना अधिक मान है वे ही अविनाशी भारत के सत्य सनातनी लोग तुझको तुच्छ समझेंगे। अध्याय 2 का 36वां श्लोक।
आवाच वादांश बहु वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम्।
चातव अहिता तव सामर्थ्यं निन्दन्तः, और तेरे विरोधी तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए। बहून अवाच्य वादान वदिष्यन्ति, बहुत सी अनकहनी बातें बोलेंगे। ततः दुख तरम नु किम्, उससे बढ़कर और क्या दुख होगा। चातव अहिता तव सामर्थ्यम निंदन्तः, बहून अवाच्य वादान वदिष्यन्ति ततः दुख तरम नु किम्। भावात, और तेरे 2500 वर्षों से सदा विधर्मियों में कन्वर्टेड विरोधी तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत सी गंदी असहनीय और सरासर झूठी ग्लानी भरी अनकहनी बातें बोलेंगे। उससे बढ़कर संसारियों से मुंह छुपाने जैसा और क्या बड़ा दुख होगा। अध्याय 2 का 37वां श्लोक। कौन्ते वाहता स्वर्गम प्राप्स्यसि, हे कुंती पुत्र, या मौत पाई तो स्वर्ग पाएगा। वा जित्वा महीम भोक्ष्यसे, अथवा जीतकर धरणी को भोगेगा। तस्मात् युद्धाय कृतनिश्चय उत्तिष्ठ, इसलिए युद्ध के लिए निश्चय कर उठ खड़ा हो। कौन्ते वाहता स्वर्गम प्राप्स्यसि वा जित्वा महीम भोक्ष्यसे, तस्मात् युद्धाय कृतनिश्चय उत्तिष्ठ। भावात, हे देहभान नाशिनी कुंती पुत्र, या हौसले से लड़ते लड़ते मौत पाई तो स्वर्ग पाएगा, अथवा जीतकर देवासुरात्माओं की सारी धरनी को भोगेगा। इसलिए गेट वे टू हेवन महाभारत युद्ध के लिए निश्चय कर उठ खड़ा हो। विश्व विजय तेरा ही जन्म सिद्ध अधिकार है। अध्याय 2 का 38वां श्लोक।
सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युञ्जस्व नैवं पापमवाप्स्यसि।
सुख दुखे लाभालाभौ जयाजयौ समे कृत्वा, सुख दुख को लाभ हानि को जय पराजय को समान मान करके। ततः युद्धाय युज्यस्व, बाद में युद्ध के लिए तैयार हो जा। एवं पापम न अवाप्स्यसि, ऐसे पाप नहीं लगेगा। सुख दुखे लाभालाभो जया जयो समे कृत्वा, ततः युद्धाय युज्यस्व एवं पापम न अवाप्स्यसि। भावात, सुख दुख को लाभ हानि को और जय पराजय रूप इन सभी सांसारिक द्वंद्वों को समान मान करके स्वयं स्थिर हो, बाद में धर्मयुद्ध के लिए तैयार हो जा। ऐसे देहधारियों के बेलगाव में रहने से आत्मा को पाप नहीं लगेगा। देखिए गीता के 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। अध्याय 2 का 39वां श्लोक। पार्थ एषा बुद्धि ते सांख्ये अभिहिता, हे पृथ्वीपाल अर्जुन, यह मत तेरे सांख्य शास्त्र में कही गई है। तू योगे इमाम श्रृणु, और कर्मयोग में इसको सुन। यह बुद्ध्या युक्तः, जिस मत से युक्त हुआ, कर्म बंधन प्रहास्यसि, कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। पार्थ एषा बुद्धि ते सांख्ये अभिहिता, तु योगे इमाम श्रृणु, यह बुद्ध्या युक्ता कर्म बंधन प्रहास्यसि। भावात, हे पृथ्वीपाल अर्जुन, यह मत तेरे ही आदिरूप कंपिलावासी कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र में संपूर्ण व्याख्या से कही गई है, और अब कर्मयोग में इस मत को मेरे से विस्तार से सुन। जिस श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। अध्याय 2 का 40वां श्लोक। अभिक्रम नाशः न अस्ति प्रत्यवायः न विद्यते। इसमें पुरुषार्थ का नाश नहीं होता, उल्टा फल नहीं होता। अस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि, इस धारणा का अल्पांश भी। महतः भयात् त्रायते, महान भय से रक्षण करता है। यह अभिक्रम नाशः न अस्ति प्रत्यवायः न विद्यते। अस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि महतः भयात् त्रायते, भावात् इस योग में पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का नाश नहीं होता, उल्टा फल भी नहीं होता। इस कर्मयोग की धारणा का अल्पांश भी। पुरुषोत्तम संगमयुगी शूटिंग अनुसार अनेक जन्मों के महान भय से रक्षण करता है। योगुर्जा से ही सारे काम होते हैं। अध्याय 2 का 41वां श्लोक। नंदन की व्यवसायात्मिका बुद्धि एका। हे कुरुवंशीय प्रहलाद, इसमें निश्चयात्मक मत एक ही है। च अव्यवसायी नाम बुद्धिहा, जबकि अनिश्चयी लोगों की मतें ही बहुशाखा अनंताः। निश्चय ही अनेक शाखाओं की असंख्य है। कुरुनंदन की व्यवसायात्मिका बुद्धि एका च अव्यवसायी नाम बुद्धिहा ही बहुशाखा अनंताः। भावात् हे कुरुवंशीय हर्ष दाता प्रहलाद, इस योग में निश्चयात्मक ज्ञान एक से आता है। अतः श्रीमत एक अद्वैत शिव बाबा की ही है, जबकि धर्म निरपेक्ष अनिश्चयी लोगों की मतें निश्चय ही अनेक द्वैतवादी विधर्मों से निकली सांप्रदायिक शाखाओं की असंख्य हैं। अध्याय 2 का 42वां श्लोक। पार्थ वेदवाद रता अन्यत न अस्ति। हे पार्थ, वेदवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं। इति वादिनः अविपश्चितः, ऐसा कहने वाले अविवेकी जन है। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति, जो ये फली फूली मीठी मीठी वाणी बोलते हैं। पार्थ वेदवाद रता अन्यत न अस्ति इति वादिनः अविपश्चितः याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति। भावात् हे पार्थ, वेदवाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं। देखिए गीता के दूसरे अध्याय का 45वां 52वां 53वां श्लोक। ऐसा कहने वाले मंदिर मूर्ति पूजा ही ब्रह्मा के भक्त बीकेस अविवेकी जन है, जो ये फली फूली मीठी मीठी वाणी बोलते हैं। पश्चिम के श्रीनाथ मंदिर में मालपुए खाने वाले भोगी हैं। अध्याय 2 का 43वां श्लोक। कामात्मानं स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदा क्रिया विशेष बहुरा भोगैश्वर्य गतिं प्रति। कामात्मानः स्वर्गपरा, कामनाओं वाले हैं। स्वर्गीय सुख पाना ही परम पुरुषार्थ है। भोगैश्वर्य गतिम प्रति जन्म कर्म फल प्रदाम, भोगैश्वर्य प्राप्ति हेतु जन्म जन्मांतर के कर्म फल प्रदायी। क्रिया विशेष बहुलाम, विशेष क्रिया कांडादि की बहुत बातें हैं। कामात्मानः स्वर्ग परा भोगैश्वर्य गतिम प्रति जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम। भावात् वे सांसारिक अंतहीन कामनाओं वाले हैं। स्वर्गीय सुख पाना ही परम पुरुषार्थ है। श्रीनाथ जैसे परमार्थ रहित व सांसारिक 56 भोग वाले भोग ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु जन्म जन्मांतर के कर्मफल प्रदायी विशेष स्वाहा स्वाहा आदि जैसी फालतू क्रियाकांड आदि की बहुत बातें करते हैं। अध्याय 2 का 44वां श्लोक। तया अपहृत चेतसाम भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम। उससे खिंचे चित्त वाले भोगैश्वर्य में आसक्त जनों की व्यवसायात्मिका बुद्धि निश्चयात्मक बुद्धि समाधो विधीयते ना समाधि में स्थित नहीं होती। तया अपहृत चेतसाम भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो विधीयते ना भावात् उस मीठी वाणी से खिंचे चित्त वाले और दैहिक भोगैश्वर्य में अच्छे से आसक्त जनों की सरासर दिखावटी और झूठी परंपराओं में आसक्त ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि कभी भी आत्मा के 84 जन्मों की संपूर्ण गहराई रूप समाधि में स्थित नहीं होती। अध्याय 2 का 45वां श्लोक। अर्जुन वेदा त्रैगुण विषय। हे अर्जुन, वेद 3 गुणों के विषय वाले हैं। निस्त्रगुण्य नित्य सत्वस्थ 3 गुणों से परे सदा सत्वगुण में स्थिर हुआ निर्द्वंद वह निर्योगक्षेम द्वंद्व मुक्त प्राप्ति व उसकी सुरक्षा रहित बन आत्मवान भव आत्मबिंदु की स्थिति वाला बन जा। अर्जुन वेदा त्रैगुण विष्या निस्त्रगुण्य नित्य सत्वस्थ निर्द्वंद वह निर्योगक्षेम आत्मवान भव भावात् हे अर्जुन, वेद 3 गुणों के विषय वाले हैं, यानी रजो और तमोगुणी भी हैं। तू यहाँ विष्णु लोकीय 3 गुणों से परे सदा 16 कलाओं से भी अतीत मेरे समान सत्वगुण में स्थिर हुआ सुख दुखादि से द्वंद्व मुक्त प्राप्ति व उसकी सुरक्षा रहित पन क्योंकि योगक्षेमम वहां में हम। देखिए गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अतः देहभान छोड़ सदाकाल आत्म बिंदु की स्थिति वाला बन जा। अध्याय 2 का 46वां श्लोक। सर्वतः संप्लुतोदके यावानर्थ उद्पाने चारों ओर से संपूर्ण भरपूर सरोवर मिले तो जितना प्रयोजन पोखरों में हो तावान विजानतः ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु उतना विशेष ज्ञानी ब्राह्मण का सभी वेदवाक्यों में होता है। सर्वतः संप्लुतोदके यावानर्थ उद्पाने तावान विजानतः ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु भावात् चारों ओर से संपूर्ण भरपूर ज्ञान जल का मानसरोवर मिले तो जितना प्रयोजन छोटे छोटे मटमैले पोखरों में हो उतना ही विशेष एडवांस ज्ञान सागर के ज्ञानी ब्राह्मण का सभी ब्रह्मामुख निसृत वेदवाक्यों जैसी मंथन रहित मूल्यों में होता है। अध्याय 2 का 47वां श्लोक। ते कर्मणि एव अधिकारा तेरा कर्मयोग में ही अधिकार है। फलेषु कदाचन मा फल में कभी नहीं कर्मफल हेतु मा भूः कर्मफल का कारण मत बनो। ते अकर्मणि संगः मा अस्तु तुम्हारे कर्मत्याग में आसक्ति ना हो। ते कर्मणि एव अधिकारा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु मा भूः ते अकर्मणि संगह मा अस्तु। भावात, तेरा श्रीमदनुसार कर्मयोग में ही अधिकार है, सांसारिक फल में कभी भी नहीं। इसलिए कर्मफल का कारण मैं ही हूँ, ऐसे मत बनो। देखिए गीता के तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक से 30वें श्लोक तक। इसलिए तुम्हारी लोक संग्रहार्थ कर्मत्याग में कभी आसक्ति ना हो। कर्मयोगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। अध्याय 2 का 48वां श्लोक।
योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।
धनंजय संगम त्यक्त्वा योगस्था। हे ज्ञान धन जेता अर्जुन, आसक्ति त्याग कर योगारूढ़ हुआ। सिद्धे सिद्ध्यो समः भूत्वा कर्माणि कुरु। सफलता असफलता में समान होकर कर्मों को कर। समत्वम योगः उच्यते, समत्व योग कहा जाता है। धनंजय संगम त्यक्त्वा योगस्था, सिद्धे सिद्ध्यो समः भूत्वा कर्माणि कुरु, समत्वम योगः उच्यते। भावात, हे सच्ची गीता एडवांस ज्ञान धन जेता अर्जुन, आसक्ति त्याग कर योगारूढ़ हुआ। अन्य द्वंद्वों जैसी सफलता असफलता में भी समान होकर कर्मफल त्यागी बनकर कर्मों को कर। हर प्रकार के द्वंद्वों में सदाकाल समत्व ही योग कहा जाता है। अध्याय 2 का 49वां श्लोक। धनंजय बुद्धि योगात ही कर्म दूरेण अवरम। हे ज्ञान धन जेता, बुद्धियोग लगाने सिवा केवल कर्म करना अति नीचा है। बुद्धो शरणम अन्विच, बुद्धिमानों की शरण ले। फलहेत्वः कृपणाः, कर्मफल के इच्छुक कंजूस हैं। धनंजय बुद्धियोगात ही कर्म दूरेण अवरम, बुद्धो शरणम अन्विच, फलहेत्वः कृपणाः। भावात, हे ज्ञान धन जेता अर्जुन, एक सर्वोत्तम शिव में बुद्धियोग लगाने सिवा केवल कर्म करना अति नीचा है। बड़े बड़े धर्माधीश बुद्धिमानों की भी बुद्धि त्रिनेत्री शिव बाबा की शरण ले। कर्म फल के इच्छुक कंजूस हैं, विश्व कल्याणार्थ किसी को कुछ नहीं देना चाहते। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। कंजूस पश्चिमी सभ्यता के प्रतीक श्रीनाथ पुजारी जैसे लोग लोक कल्याण लिए कुछ भी त्यागना नहीं चाहते। सारे देशी गाय वाले घी के माल बेचकर भी खुद ही खा जाते हैं। अतः इन उड़ीसा जैसे गरीबों के राज्य में पूरब के जगन्नाथ का सादा भोग खाना है। इसीलिए बाबा ने मुरली तारीख 26 जून 1970 में बोला, सभी से फर्स्ट क्लास शुद्ध खाना है, दाल या कड़ी, चावल, आलू। अध्याय 2 का 50वां श्लोक।
बुद्धि युक्तो चाहती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम्।
बुद्धियुक्तो ही उभे सुकृत दुष्कृते जहाती। बुद्धियोगी इसमें दोनों प्रकार के अच्छे और बुरे कर्म छोड़ देता है। कर्म सुकौशलम योगः, कर्मों में कुशलता योग है। तस्मात् योगाय युज्यस्व, अतः योग में जुट जा। बुद्धियुक्तो ही उभे सुकृत दुष्कृते जहाति। कर्म सुकौशलम योगः, तस्मात् योगाय युज्यस्व। भावात्, बुद्धियोगी इस लोक में दोनों प्रकार के अच्छे और बुरे माने जाने वाले कर्म जैसे दान धर्म या रिश्वत चोरी चकारी आदि भी छोड़ देता है। कर्मों में कुशलता ही योग है। अतः क्षेत्र रूप अर्जुन के मुकर्रर रथ प्लस क्षेत्रज्ञ शिव ज्योति के योग में जुट जा। अध्याय 2 का 51वां श्लोक। बुद्धियुक्ता मनी शिन्हा, क्योंकि बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन कर्मजं फलं त्यक्त्वा, कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर जन्म बंध विनिर्मुक्ताः, जन्म बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए अनामयम पदम गच्छन्ति, पाप रहित परमपद को प्राप्त करते हैं। कि बुद्धियुक्ता मनीषिणः कर्मजं फलं त्यक्त्वा जन्म बंध विनिर्मुक्ताः अनामयम पदम गच्छन्ति भावात्, क्योंकि शिव बाबा से बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन विश्व कल्याण के कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर जन्म जरा मरणादिक बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए पाप रहित अतीन्द्रिय सुख वाले कलातीत विष्णुलोकीय परमपद को वैकुंठ में प्राप्त करते हैं। अध्याय 2 का 52वां श्लोक। यदा ते बुद्धि श्रोतव्यस्य श्रुतस्य, जब तेरी बुद्धि सुनी सुनाई, च मोह कलिलम व्यति तरिष्यति, और मोह रूप कीचड़ को पार करेगी, तदा निर्वेदम गन्तासि, तब वैराग्य को प्राप्त होगा। यदा ते बुद्धि श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च मोह कलिलम व्यति तरिष्यति, तदा निर्वेदम गन्तासि भावात्, जब तेरी द्वापुर से ही विकारी बनी बुद्धि शास्त्र दैहिक गुरुओं मीडिया आदि की सुनी सुनाई और विदेशियों विधर्मियों की अंधश्रद्धा युक्त झूठी बातों के मोह रूप कीचड़ को भली भांति पार करेगी, तब मिसाइलों से भस्मीभूत होने वाली दुनिया के वैराग्य को प्राप्त होगा। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। सुनी सुनाई बातों पर ही भारतवासियों ने दुर्गति को पाया है, अभी भी पाते जा रहे हैं। मुरली तारीख 30 जनवरी 1971, पृष्ठ 4 आदि। अध्याय 2 का 53वां श्लोक। यदा ते श्रुतिवि प्रतिपन्ना बुद्धि, जब तेरी श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि समाधो निश्चला अचला स्थास्यति, परमात्मा की स्मृति में अविचल स्थिर होगी, तदा योगम अवाप्स्यसि, तब योग को पालेगा। यदा ते श्रुतिवि प्रतिपन्ना बुद्धि समाधो निश्चला अचला स्थास्यति, तदा योगम अवाप्स्यसि भावात्, जब तेरी श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि साक्षात आए हुए परमात्मा की स्मृति में अविचल स्थिर होगी, तभी अति सूक्ष्म आत्मस्टार रूपी रिकॉर्ड के अंदर 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्रगत सागर मंथन में लगेगी, तब योग की समाधिगत स्थिति को पालेगा। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। इन शास्त्र आदि पढ़ने से आज तक भी किसको सद्गति नहीं मिली है? मनुष्य आत्माओं की सद्गति का ज्ञान इन शास्त्रों में नहीं है। मानवीय गीता से भी किसी की सद्गति हो नहीं सकती। मुरली तारीख 20 मई 1992, पृष्ठ 1 आदि। अध्याय 2 का 54वां श्लोक। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, केशव हे ब्रह्मा के ईश्वर, स्थित प्रज्ञ से समाधि स्थस्य का भाषा, स्थिर बुद्धि की पूरी गहराई में स्थिर की क्या परिभाषा है? स्थिति किम प्रभाषेत, स्थिर बुद्धि कैसे बोलता है? किम आसीत किम व्रजेत, कैसे बैठता है कैसे चलता है? केशव स्थित प्रज्ञ से समाधि स्थस्य का भाषा, स्थिति किम प्रभाषेत, किम आसीत किम व्रजेत भावात, का प्लस ईश अर्थात हे ब्रह्मा रूपी बेसमझ बैल के ईश्वर, बेहद नेपाल के चेतन पशुपति नाथ, स्थिर बुद्धि की अर्थात संपूर्ण प्लस अधि प्लस थसे निरंतर आत्म स्टार की पूरी गहराई में स्थिर की क्या परिभाषा है? स्थिर बुद्धि आहार विहार रहन सहन आदि में कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? स्थिर बुद्धि की सारी माहिती चाहिए। अध्याय 2 का 55वां श्लोक। भगवान उवाच।
प्रजहाते यदा कामान सर्वान् पार्थ मनुगता आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्ततोच्यते।
भगवान ने कहा, पार्थ मनोगतान सर्वान् कामान यदा प्रजहाति, हे पृथ्वीपति, मनसा संकल्पों में चलने वाली सभी कामनाओं को जब भली भांति त्यागता है, आत्मना आत्मनि एव तुष्टः, अपने आप से आत्मस्तार में ही संतुष्ट रहता है, तदा स्थित प्रज्ञः उच्यते, तब स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। पार्थ मनोगतान सर्वान् कामान यदा प्रजहाति आत्मना आत्मनि एव तुष्टः तदा स्थित प्रज्ञः उच्यते। भावात, हे पृथ्वीपति, मनसा संकल्पों में चलने वाली सभी कामनाओं को मनुपुत्र मानव जब भली भांति त्यागता है, अपने आप से आत्मस्तार में या परमात्म स्मृति में ही संतुष्ट रहता है, तब स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है, अन्यथा नहीं कह सकते। फुटनोट। बाबा ने मुरली में कहा है, इच्छा मात्रम अविद्या, मुरली, तारीख 10 अप्रैल 1968। देखिए गीता के चौथे अध्याय का 19वां श्लोक, 6वें अध्याय का 4था श्लोक, 18वें अध्याय का 24वां श्लोक इत्यादि। अध्याय 2 का 56वां श्लोक। दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुखों में उद्वेग से रहित मन वाला, सुखेषु विगत स्प्रिहा, सुखों में इच्छा रहित, वीत राग भय क्रोधा, राग भय क्रोध से रहित, मुने स्थित धीह उच्यते, मनन चिंतनशील व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्प्रिहा, वीत राग भय क्रोधा, मुने स्थित धीह उच्यते। भावात, दुखों में उद्वेग बेचैनी से रहित मन वाला, लौकिक सुखों में अनासक्त रहने वाला, इच्छा रहित तथा पुरुषोत्तम संगम युग में खास राग भय क्रोध से रहित ज्ञान नेत्र से इस प्रकार ईश्वरीय महावाक्यों को जानने वाला मनन चिंतनशील व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अध्याय 2 का 57वां श्लोक। या सर्वत्र अनभिस्नेहा, जो सब ओर से पूरा स्नेह रहित हुआ, तत्तत् शुभाशुभम प्रापे, उनोन शुभ या अशुभ को पाकर, नाभिनंदति ना द्वेष्टि, ना पूरा आनंदित होता है, ना द्वेष करता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर है। या सर्वत्र अनभिस्नेहा, तत्तत् शुभाशुभम प्रापे, नाभिनंदति ना द्वेष्टि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भावात, जो सिवा परमपिता प्लस परमात्मा के सब ओर से पूरा स्नेह रहित हुआ, उन सांसारिक शुभ या अशुभ को पाकर साक्षी दृष्टा की भांति ना पूरा आनंदित होता है, ना दुखी होकर द्वेष करता है, उसकी पारखी और निर्णयात्मक बुद्धि दृढ़ता पूर्वक आत्मा में स्थिर है। अध्याय 2 का 58वां श्लोक।
यदा संहरते चायं कूर्मोंगानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः
चा यदा अयम कूर्मः अंगानि इव, और जब यह कछुए के अंगों की तरह इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः सर्वशः संहरते, इंद्रियों को इंद्रियों के विषय भोग सब ओर से संपूर्ण खींच लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। चा यदा अयम कूर्मः अंगानि इव इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः सर्वशः संहरते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भावार्थ, और जब यह योगी कछुए के अंगों की तरह मन के संकल्पों सहित श्रेष्ठ और भ्रष्ट दसों इंद्रियों को इंद्रियों के रूप रस गंध आदि विषय भोग सब ओर से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है, तब उस योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। अध्याय 2 का 59वां श्लोक। निराहारस्य देहिना विषया विनिवर्तन्ते, विषय भोग त्यागी देहधारी पुरुष के भोग विशेषतः हटते हैं। रसवर्जम, रस लेने की आसक्ति नहीं हटती। अस्य रसा अपि परम दृष्ट्वा निवर्तते, इसकी आसक्ति भी परमार्थ को देखकर हट जाती है। निराहारस्य देहिना विषया विनिवर्तन्ते, रसवर्जम अस्य रसा अपि परम दृष्ट्वा निवर्तते भावात्, विषय भोग त्यागी देहधारी पुरुष के भोग तो विशेषतः हटते हैं, किंतु रस लेने की पूर्व अनुभूतियों वाली मानसिक आसक्ति नहीं हटती। अर्थात इस राजयोगी की तो आसक्ति भी कलातीत अतीन्द्रिय सुख के परमार्थ को देखकर पूरी ही हट जाती है। अध्याय 2 का 60वां श्लोक। कौन्ते, क्योंकि हे कुंती के पुत्र, यत्तह विपश्चिता पुरुषस्य अपि, प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष की भी, प्रमाथीनी इंद्रियाणि अच्छे से मत डालने वाली इंद्रियां, मनः प्रसभम हरन्ति मन को बलपूर्वक खींच लेती हैं। कि कौन्ते यत्तह विपश्चिता पुरुषस्य अपि प्रमाथीनी इंद्रियाणि मनः प्रसभम हरन्ति भावात्, क्योंकि हे देहभिमान नाशिनी कुन अर्थात देहम दारेति कुंती के पुत्र, प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पारखी पुरुष की भी अच्छे से मत डालने वाली खास नेत्र और कामेंद्रिय सहित अन्य इंद्रियां, अर्जुनरथ के सर चढ़े चंचल कपिध्वज वाले मन को बलपूर्वक खींच लेती हैं। अध्याय 2 का 61वां श्लोक। तानि सर्वाणि संयमे, उन सब को पूरा वश करके मत्परः युक्तः आसीत, मेरे आश्रित हुआ मुझ में मन लगा। कि यस्य इंद्रियाणि वशे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। तानि सर्वाणि संयमे मत्परः युक्तः आसीत, ही यस्य इंद्रियाणि वशे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भावात्, उन सब इंद्रियों को पूरा वश करके मेरे आश्रित हुआ मुझ शिव में ही मन लगा। क्योंकि जिस मन बुद्धि वाली ज्योति बिंदु आत्मा की इंद्रियां वश में हैं, उसकी बुद्धि जन जन चंचल बने मन की अस्थिरता से हटकर दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। अध्याय 2 का 62वां श्लोक। विषयान ध्यायतः पुंसः, विषय का ध्यान करने वाले पुरुष को तेषु संगः उपजायते, उनमें आसक्ति अर्थात लगाव उत्पन्न होता है। संगात कामः संजायते, आसक्ति से कामना भली भांति पैदा होती है। कामात क्रोधः अभिजायते, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। विषयान् ध्यायतः पुंसा, तेषु संगः उपजायते, संगात कामः संजायते, कामात क्रोधः अभिजायते। भावात विषय भोगों का ध्यान करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति अर्थात लगाव उत्पन्न होता है। आसक्ति से मनसा संकल्प में कामना भली भांति पैदा होती है। दैहिक विकारी कामना प्रायः पूरी न होने से अनियंत्रित क्रोध जोर से उत्पन्न होता है। अध्याय 2 का 63वां श्लोक। क्रोधात सम्मोह भवति, क्रोध से संपूर्ण मोह अर्थात मूर्ता आती है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, भरपूर मूर्ता द्वारा स्मृति नाश होता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशः, स्मृति के भ्रष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नष्ट होने से मृत्यु होती है। क्रोधात सम्मोह भवति, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भावात क्रोध से संपूर्ण मोह अर्थात मूर्ता आती है। भरपूर मूर्ता से जर्जरी भूत बुद्धि द्वारा स्मृति नाश होता है। स्मृति के भ्रष्ट होने से परख और निर्णय शक्ति रूपा समझ शक्ति अर्थात बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से धर्म पर अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है। अध्याय 2 का 64वां श्लोक।
राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति।
तु राग द्वेष वियुक्तैः विधेयात्मा, परंतु राग द्वेष से विहीन अनुशासित मन वाला आत्मवश्यः इंद्रिय विषयांचरण, आत्मा की वशीभूत इंद्रियों से भोग भोगते हुए प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को पाता है। तु राग द्वेष वियुक्तः विधेयात्मा, आत्मवश्यः इंद्रिय विषयांचरण प्रसादम अधिगच्छति। भावार्थ, परंतु राग द्वेष से विहीन अनुशासित मन वाला पक्षपात रहित साक्षी दृष्टा राजयोगी राजयोग शासित आत्मा की वशीभूत इंद्रियों से धर्मानुकूल अर्थात हिंसाहीन समुचित भोग भोगते हुए अविनाशी प्रसन्नता को पाता है। सुख देने से ही सदा सुख होता है। अध्याय 2 का 65वां श्लोक। प्रसादे असे सर्व दुखानाम, हानि असे उपजायते, प्रसन्नता से इसके सब दुखों का नाश हो जाता है। ही प्रसन्न चेत सह बुद्धि आशु परे वतिष्ठते, क्योंकि प्रसन्न चित्त की बुद्धि शीघ्र अच्छे से स्थिर होती है। प्रसादे असे सर्व दुखानाम, हानि असे उपजायते, ही प्रसन्न चेत सह बुद्धि आशु परे वतिष्ठते। भावात, प्रसन्नता से इस योगी के जन जरादि सब दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि प्रसन्न चित्त की बुद्धि शीघ्र अच्छे से आत्मा में स्थिर होती है। अध्याय 2 का 66वां श्लोक। अयुक्तस्य बुद्धिः न अस्ति, योगी नहीं उसको बुद्धि नहीं होती। च अयुक्तस्य भावना न, और भोगी व्यक्ति में भावना नहीं होती। च अभावितः शान्तिः न, और भावनाहीन को शांति नहीं होती। अशांतस्य सुखं कुतः, अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ होगा। अयुक्तस्य बुद्धिः न अस्ति च अयुक्तस्य भावना न, च अभावितः शान्तिः न अशांतस्य सुखं कुतः। भावात्, जो योगी नहीं उसको बुद्धि नहीं होती, और बुद्धिमानों की बुद्धि शिव से दूर। भोगी व्यक्ति में भावना नहीं होती, और श्रद्धा भावनाहीन शांत प्लस नूह जैसे को शांति नहीं होती। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ होगा, नहीं हो सकता ना। अध्याय 2 का 67वां श्लोक। यत् मनः चरताम् इंद्रियाणाम् अनुविधीयते, क्योंकि जो मन विचरण करती हुई इंद्रियों का अनुसरण करता है, तत् वायुः अम्भसि नावम् एव, वह वायु द्वारा पानी में नाव की तरह। अस्य प्रज्ञाम् हरति, इस बुद्धि को हर लेता है। हि यत् मनः चरताम् इंद्रियाणाम् अनुविधीयते, तत् वायुः अम्भसि नावम् एव, अस्य प्रज्ञाम् हरति। भावात्, क्योंकि जो चंचल मन दैहिक भोगों में विचरण करती हुई कोई भी ज्ञान या कर्म इंद्रियों का अनुसरण करता है, वह मन तीव्र गति से बहती वायु द्वारा पानी में तैरती हल्की नाव की तरह, इस भोगी का बेलगाम दौड़ता अश्व रूप मन बुद्धि को हर लेता है। अध्याय 2 का 68वां श्लोक। महाबाहो तस्मात् यस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, हे लंबी भुजाओं वाले, इसलिए जिसकी इंद्रियां इंद्रिय भोगों से सर्वशः निगृहीतानि, सब प्रकार रोक ली गई हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि भली भांति स्थिर रहती है। महाबाहो तस्मात् यस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः सर्वशः निगृहीतानि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भावात्, हे अष्टमूर्ति रूप सहयोगियों रूपी लंबी भुजाओं वाले, इसलिए जिसकी इंद्रियां इंद्रिय भोगों से मन वचन कर्म द्वारा सब प्रकार विकारों से रोक ली गई हैं, उस संयमित मन वाले ज्ञानी और सहज राजयोगी की बुद्धि भली भांति ज्योति बिंदु आत्मस्तार में स्थिर रहती है। अध्याय 2 का 69वां श्लोक। सर्वभूतानाम या निशा, सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि है, तस्याम संयमी जागर्ति, उसमें योगी जागता है। यस्याम भूतानि जागृति, जिसमें प्राणी जागता है। सपश्यतः मुनेह निशा, वह मननशील मुनि के लिए रात्रि है। सर्वभूतानाम या निशा, तस्याम संयमी जागर्ति, यस्याम भूतानि जागृति, सपश्यतः मुनेह निशा। भावात्, सभी सांसारिक प्राणियों के लिए जो आध्यात्म रात्रि है, उसमें राजयोगी जागता है। जिस मानवीय भौतिकता में भ्रमित प्राणी स्वर्गीय दिन समझ जागता है, वह पुरुषोत्तम संगमयुगी सच्ची गीता एडवांस ज्ञान के 60 वर्षीय मंथन करता मननशील मुनि के लिए रात्रि है। अध्याय 2 का 70वां श्लोक। अपूरे मानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम, चारों ओर से भरपूर अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में यद्वत् आपः प्रविशन्ति, जैसे जलधाराएं प्रवेश पाती हैं, तद्वत् यम सर्वे कामाः प्रविशन्ति, वैसे ही जिसकी सब इच्छाएं प्रवेश पाती हैं, स शांतिम आपनोति कामकामिना, वो शांति को पाती है कामनाओं का इच्छुक नहीं। अपूरे मानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम यद्वत् आपः प्रविशन्ति, तद्वत् यम सर्वे कामाः प्रविशन्ति, स शांतिम आपनोति कामकामिना। भावात् चारों ओर से भरपूर अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जैसे चेतन ज्ञान नदियों की जलधाराएं प्रवेश पाती हैं, वैसे ही जिसकी अच्छी बुरी अपनी सब इच्छाएं यानी संकल्प विकल्पों की लहरें उस अगाध ज्ञान सागर शिव बाबा की जलमयी में समा जाती हैं, अर्थात प्रवेश पाती हैं, वो ही आत्मा शांति के सागर को पाती है कामनाओं का इच्छुक नहीं पाता। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य, तुम बच्चे जानते हो हमको बाप भगवान मिला तो सब कुछ मिला। मुरली तारीख 27 जून 1965 पृष्ठ 2 आदि, अध्याय 2 का 71वां श्लोक। यह कुमान सर्वान कामान विहाय, जो पुरुष सारी कामनाओं को छोड़कर निःस्पृहा निर्ममाह निरहंकारः चरति, लालसा रहित ममताहीन निरहंकारी भाव का आचरण करता है, स शांतिम अधिगच्छति, वह शांति प्राप्त करता है। यह कुमान सर्वान कामान विहाय निःस्पृहा निर्ममाह निरहंकारः चरति, स शांतिम अधिगच्छति। भावात् जो पुरुष सारी श्रीमद विहीन सांसारिक भौतिक कामनाओं को यहाँ ही छोड़कर लालसा रहित ममताहीन और निरहंकारी निर्माण नम्रचित भाव का श्रेष्ठ आचरण करता है, वह दीर्घकालीन नैष्ठिकी परमब्रह्म की शांति प्राप्त करता है। अध्याय 2 का 72वां श्लोक। पार्थ एषा ब्राह्मी स्थिति, हे अर्जुन, यह परम ब्रह्म परम प्लस ईश्वर से उत्पन्न अवस्था है। एनाम प्रापे न विमुहेति, इसे प्राप्त करके मोह में नहीं पड़ता। अंतकाले अपि अस्याम स्थित्वा, महामृत्यु में भी इसमें स्थिर होकर ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, परम ब्रह्म के निर्वाण धाम को पाता है। पार्थ एषा ब्राह्मी स्थिति, एनाम प्रापे न विमुहेति, अंतकाले अपि अस्याम स्थित्वा ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। भावात् हे अर्जुन, यह परम ब्रह्म परम प्लस ईश्वर से उत्पन्न सर्वोत्कृष्ट अव्यक्त और अविनाशी अवस्था है। इसे प्राप्त करके योगी मनुष्य किसी व्यक्ति या वस्तु के मोह में नहीं पड़ता और कल्पांत में महाविनाश की महामृत्यु में भी इस अव्यक्त और अविनाशी स्थिति में स्थिर होकर नंबरवार संगठित पंचमुखी ब्रह्माओं में से ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म के निर्वाण धाम को पाता है।
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम।